हरे कृष्णा।
आप सबका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर इस्कॉन दिल्ली सोमवार के दिन आज आप सबका स्वागत है। प्रति सोमवार को आप सब बड़े प्रेम के साथ भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है जिसमें जीवन के जीने की शैली आत्मा के स्तर के ऊपर इस संसार में कैसे निर्लेप जिया जाए, निर्लेप कमल के फूल की तरह पानी में रहते हुए भी पानी न छुए ऐसे रहा जाए और अपना समय यहाँ की यात्रा का पूरा करके वापस भगवत धाम कैसे पहुँचे इसकी जानकारी भगवत गीता में है। भगवत गीता योग शास्त्र है, ये शास्त्र है और योग शास्त्र है मतलब भगवान से संबंध स्थापित करने का शास्त्र है। और भगवत गीता के अंदर जहां जहां भगवान श्री कृष्ण बोले हैं वहां लिखा है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान के शब्द हैं। तो भगवान जहां शब्द है वहां कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहा है। इसका मतलब कृष्ण भगवान है जो बोल रहे। आश्चर्य लगेगा परमात्मा उवाच नहीं लिखा हुआ है, परमात्मा बोला ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्म उवाच ऐसा भी नहीं लिखा है कि ब्रह्म बोल रहा है, क्योंकि पर्यावाची शब्द जो भगवान के लिए हमको मिलते हैं ब्रह्म परमात्मा आदि, लेकिन भगवत गीता में सीधा सा भगवान लिखा है। तो ये ध्यान देने का विषय है कि भगवान बोल रहे हैं, ये भगवान के शब्द हैं। अब चौथे तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि दूरेण हे अवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय। अर्जुन जो ये कर्म है ना इनसे दूर रहो, दूरेण है अवरम, इनको वरण मत करो। अवरम का मतलब इनको वरण मत करो, इसको दूर फेंक दो। क्यों? क्योंकि ये तो फल में बांध देंगे, अच्छा या बुरा फल तो भोगना ही पड़ेगा कर्म का। इसलिए तुम बुद्धि योग में स्थित हो जाओ। ये तीसरी अध्याय का श्लोक है कि कर्म के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कर्म करोगे तो फल भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा कर्म अपना फल देगा। इस शरीर को पता है खेत कहते हैं, और खेत में हम क्या करते हैं? बीज बोते हैं, और क्या मिलता है? फल मिलता है। शरीर रूपी खेत में कर्म का बीज हम बोते हैं और उसका फल सुख या दुख हम भोगते हैं। तो कर्म करेंगे तो फल तो भोगना ही पड़ेगा, तो कर्म के चक्कर को छोड़ दो, ऐसे भगवान ने कह दिया एक स्थिति में, और बुद्धि का शरण ले लो, बुद्धि योग का। या एक बात आपको बताते चले, बुद्धि भगवान ने सबको दिए लेकिन बुद्धि योग सबको नहीं देते। बुद्धि देने का मतलब है उठना बैठना खाना पीना कैसे जीना चाहिए, उसका तो सबको पता है। बुद्धि योग का मतलब अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान के साथ संबंध कैसे स्थापित किया जाए, ये सबको नहीं देते। बुद्धि सबको देते हैं, बुद्धि योग सबको नहीं देते हैं, ये भी सावधानी से समझना चाहिए। बुद्धि योग किसको देते हैं? ये दसवें अध्याय में भगवान कहेंगे ददामी बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग देता हूं। किसको? भजताम प्रीति पूर्वक, जो प्रेम से मेरा भजन करते, जो मुझसे प्रेम करते हैं मेरा स्मरण करते हैं, उसको मैं बुद्धि योग देता हूं, बाकी सबको बुद्धि देता हूं। तो बुद्धि और बुद्धि योग में अंतर है, यह समझना चाहिए। तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछ लिया, ये दूसरे अध्याय में ऐसी बातें हुई है, तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया, आप मुझे कर्म में क्यों लगा रहे हो, और घोर कर्म में आदमी को मारने वाला काम करा रहे हो युद्ध भूमि के अंदर, फिर तो घोर कर्म है ना, इसमें मुझे क्यों लगा रहे हो? आप जब कहते हैं बुद्धि योग का तो छोड़ो, मैं बुद्धि योग में स्थित हो जाता हूं। तो प्रश्न यह उठता है, भगवद गीता में एक तरफ आत्मज्ञान का वर्णन है और दूसरे तरफ काम नहीं छोड़ना है। अगर हम कहें कि हम ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे, यह भगवद गीता का सिद्धांत नहीं है। ज्ञान तो प्राप्त करना है लेकिन अपने कर्म को नहीं छोड़ना है। यह बहुत, इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। भगवद गीता की शिक्षा यह अभ्यास में प्रैक्टिकल है। तो आज फिर पांचवें अध्याय का नाम लिखा है श्रील प्रभुपाद ने, कर्म योग। कर्म योग, और उसका दूसरा अर्थ लिखा है कृष्ण भावना में कार्य। कार्य कृष्ण भावना में स्थित होकर करना, कर्म योग। देखिए एक शब्द है कर्म, सब लोग जानते हैं एक शब्द कर्म, उसका मतलब है कुछ करना और उसका फल होता है, उसका फल हम भोगते हैं। कर्म योग का अर्थ है, जब शब्द योग आ जाए उसका अर्थ होता है भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु नारायण से संबंध। कर्म भगवान से संबंधित कर्म, योग शब्द आएगा तो कर्म नहीं रह जाएगा। तो कर्म और कर्म योग में अंतर है, यह बात ठीक तरह समझ में आना चाहिए। कर्म संसार में फल भोगने के लिए हमें बाध्य करता है, और जब फल भोगना है तो शरीर प्राप्त करेंगे तब फल भोगेंगे, तो कर्म करेंगे तो दोबारा शरीर लेना पड़ेगा। लेकिन कर्म योग करेंगे तो कर्म हम करेंगे लेकिन फल उसका भगवान को अर्पण कर देंगे। कर्म योग दो प्रकार का है, एक सकाम कर्म योग, सकामना, भगवान हम ये काम करते हैं जो फल मिलेगा कुछ आपकी सेवा में लगाएंगे कुछ हम भोगेंगे, इसको बोलते हैं सकाम कर्म। एक होता है निष्काम कर्म, कर्म तो हम भगवान सेवा तो करेंगे, काम तो करेंगे, फल आपको सब अर्पण कर देते हैं, ये हुआ निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म और निष्काम कर्म योग, ये बात ठीक है, समझ में आ रही है। अब आज अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहा है इस पांचवें अध्याय में, अर्जुन उवाच, ये अर्जुन के शब्द है। अर्जुन क्या कह रहे हैं, संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च संशसी यत श्रेह एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अब चौथे अध्याय का नाम था क्या था, ज्ञान योग, दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान की इतनी महिमा भगवान ने बता दी, तो अर्जुन कहता है फिर आपने कहा था दिव्य ज्ञान ही प्राप्त करना है, तो वो ज्ञान प्राप्त करने का मतलब कुछ काम तो नहीं करना चाहिए। तो अब अर्जुन एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण आपने कहा कि कर्म का संन्यास कर दो, मतलब कर्म को छोड़ दो, कर्म को छोड़ दो। संन्यास का मतलब क्या होता है, छोड़ देना, त्यागना, कर्म का त्याग कर दो। और फिर पुनर, फिर आप कह रहे हैं पुनर, मतलब पुनः आप फिर कह रहे हैं योगम च संक्षिप्तः, अभी तो आप योग की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, कौन से योग की, कर्म योग की। आपको अगली बार हमने कहा था भगवान श्री कृष्ण ने यह दिव्य ज्ञान गीता का पहले सूर्य देव को दिया, और सूर्य देव अपने काम में कभी भी चूकता नहीं है, अभी तक अपने काम को कर रहा है। तो भगवत भक्ति रूपी कर्म योग का बहुत बड़ा उदाहरण सूर्य देव है, जो दूसरों के हित के लिए सदा के लिए काम कर ही रहा है। तो कर्म योग का आप प्रशंसा कर रहे हैं, और एक तरफ आप कहते हैं कि कर्म को त्याग दो और ज्ञान में स्थित हो जाओ। अब इन दोनों में से जो श्रेय है, जो हमारे हित में है, उसके बारे में निश्चित करके हमें बताओ, अर्जुन का यह प्रश्न है। दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है श्रेय और एक होता है प्रिय। श्रेय का अर्थ होता है शास्त्र के अनुसार, नीति के अनुसार, धर्म के अनुसार, साधु संतों के अनुसार जो श्रेष्ठ कर्म है वो बताओ। प्रिय का अर्थ है जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मेरा लाभ है, जो मेरे को पसंद है उसको प्रिय बोलते हैं, लेकिन अर्जुन श्रेय पूछ रहा है, प्रिय नहीं पूछ रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेय पूछना चाहिए। श्रेय का मतलब जो लोक परलोक में आदमी को उद्धार के रास्ते पे ले जाए, प्रिय का मतलब थोड़ा भोग दे और फिर संसार में भटकता रहे आदमी। तो अर्जुन कहता है जिसमें मेरा श्रेय हो वो निश्चित को करके बताइए। श्री प्रभुपाद जी इसके भावार्थ में लिखते हैं कि दूसरे अध्याय में भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया कि आत्मा शरीर से अलग है। दूसरे अध्याय में आत्मा और शरीर अलग है, जैसे घर और घर का मालिक अलग है, घर और घर का मालिक दोनों अलग है ना। मुख्य घर है कि घर का मालिक है, लेकिन आजकल तो घर मुख्य, करोड़ रुपये का घर है और मालिक लाख रुपये का भी नहीं है। घरों का तो ऐसा हाल हो गया, ऐसे घर महंगे हो गए हैं ना, मालिक से घर महंगे आजकल। मालिक की सारे उम्र की नौकरी की तनख्वाह में एक घर नहीं बनता है। ऐसे जब ऐसी संस्कृति जब बनती है, ऐसा जब समाज बनता है, ऐसा जब कल्चर होता है जहां घर को महत्व घर के मालिक से ज्यादा दिया जाता है, शरीर को महत्व आत्मा से ज्यादा दिया जाता है, उसको भौतिकवादी समाज कहते हैं। ये पक्का भौतिकवादी समाज की पहचान है कि घर को घर के मालिक से ज्यादा महत्व है। आपकी इंश्योरेंस कितने की है? लाख की, दो लाख की, कितनी? एक आदमी कितनी होती है? हाँ जी, आदमी कितने से करे, ज्यादा से ज्यादा कितनी इंश्योरेंस आदमी की होती है बताइए? लाइफ इंश्योरेंस कितने की होती है? हाँ, करती कितने, कितने करती, कितने ही करते हैं? 5 लाख। और घर कितने का है? तो ये भौतिकवादी समाज की पहचान है कि मालिक से ज्यादा घर को महत्व है, लेकिन महत्व किसको ज्यादा देना चाहिए? मालिक को। किसान और खेत, खेत बहुत महंगे हो गए हैं, किसान बहुत सस्ते हैं, ये दूसरा समाज हमको दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण किसान है कि खेत है? किसान है, खेत अपने आप तो कुछ नहीं उगा के देगा, किसान जब उसके अंदर कुछ बोएगा मेहनत करेगा तब होगा। किसान की तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, लेकिन खेतों की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ये दूसरा प्रमाण है भौतिकवादी समाज का, मानव से ज्यादा महत्व भौतिक चीजों को दिया हुआ है। ये सत्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे ही हमने शरीर के लिए तो बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन आत्मा के बारे में जानकारी के लिए समय भी नहीं है हमारे पास। ये सत्य दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कितना स्पष्ट रूप से हमारे को अपना, ये जिस समाज में हम रह रहे हैं वो समाज शिक्षा ही ऐसी देता है कि शरीर महत्वपूर्ण है, आत्मा का कोई महत्व नहीं। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने शरीर और आत्मा को अलग करके बताया, इसको ज्ञान बोलते। लेकिन ये ज्ञान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है हमारे को संसार से मुक्त करने के लिए। क्यों? इसलिए हमें पता लग गया कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा का कर्तव्य क्या है ये हमको पता नहीं लगे, आत्मा का काम क्या है ये हमको पता नहीं लगे, आत्मा की एक्टिविटी क्या है ये हमको पता नहीं लगे, तो फिर हमारा कोई लाभ नहीं हो सकता। तो ये विशेष यहां बात समझने की है। अभी जो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि भगवान तीसरे अध्याय में भगवान ने कह दिया कि ज्ञान में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। ज्ञान में स्थित होकर कर्म कैसे किया जाता है? काम हम कर रहे हैं ये जानकर कि ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है, आत्मा अमर है, आत्मा भगवान का अंश है, संसार में जो कुछ है वो भगवान का है, हम निमित्त मात्र अपना कर्तव्य कर्म करके जा रहे हैं। तो आदमी किसी बंधन में पड़ेगा नहीं। अगर मैं अपना मानूंगा कुछ तब मेरे को तकलीफ होगी ना जाने की। अब मैं अपना कुछ मान ही नहीं रहा हूं, मेरा कुछ है नहीं, ये शरीर ही जब मेरा नहीं है तो फिर और क्या मेरा हो सकता है? ये शरीर हमारा है क्या? किसका है ये शरीर? भागवत में तो ऐसे लिखा है कि ये शरीर या तो गीजू का है, गीद का है, मरने के बाद वो खाती हैं, या तो जमीन में दफनाने के बाद कीड़े खाते हैं, उनकी विष्टा बन जाता है। विड़मी क्या शब्द, दो शब्द लिखे हैं मेरे को याद आएंगे, अभी आपको बताएंगे। कृमि मुट्ठी भर राख है, ये शरीर की तो अवस्था ही है, आत्मा तो ऐसा नहीं। तो अब ये है कि ये जानकर जो काम करता है वो काम के बंधन में नहीं पड़ता है, ये प्रभुपाद कहते हैं, बता दिया। फिर चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि जितने भी यज्ञ किए जाते हैं वो भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। प्रायः लोग यज्ञ क्यों करते हैं? स्वर्ग में जाने के लिए, संसार के सुख के लिए। तो यज्ञ करना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। यज्ञ किसको कहते हैं? वैसे यज्ञ भगवान विष्णु को कहते हैं। यज्ञ पुरुष कौन है? आदि यज्ञ कौन है? अर्जुन पूछता है कहां रहता है। आठवें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है कि आदि यज्ञ कौन है, यज्ञ का आदिपति कौन है, कहां रहता है? और भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, अहम आदि यज्ञ, मैं आदि यज्ञ हूं। देहन देही नाम सब देह, शरीरों में स्थित हूं, सबकी देही में स्थित हूं। देही नाम आश्रित, सबके मैं हृदय में बैठा हुआ हूं। तो यज्ञ किसके लिए करना चाहिए? यज्ञपति के लिए करना चाहिए, और यज्ञपति भगवान विष्णु है, नारायण है, कृष्ण है। तो सारे यज्ञ इसलिए करने चाहिए कि भगवान की जानकारी है जिसके लिए किए जाते हैं, ये चौथे अध्याय में बताया गया। अब भगवान ने क्या कह दिया कि एक तो काम करो, कर्म करो। एक जगह कहा कि क्या, उत्तिष्ठ उठो, युद्धस्व युद्ध करो अर्जुन। एक तरफ कहा कि ज्ञान को प्राप्त करो, एक तरफ कहा कि युद्ध करो। अब अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। अब अर्जुन की कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूज है किस बार के बारे में? कि ज्ञान का मतलब है सबका त्याग करना, ज्ञान का अर्थ है सबका त्याग करना। और फिर भगवान कहते हैं कि तुम भक्ति के भाव से कर्म भी मेरे लिए करो। तो फिर दोनों कैसे साथ किए जा सकते? इसलिए अर्जुन का यहां यह प्रश्न है कि बताइए कि ज्ञान में स्थित होकर सारे कर्म छोड़ दूं? जैसे देखो, ज्ञानी सन्यासी को ज्ञानी बोलते हैं, और सन्यासी घर बार छोड़ के चला जाता है, वो यज्ञ भी नहीं करता है, वो कोई भी कर्तव्य कर्म उसके लिए रह नहीं जाता है, इसको सन्यासी बोलते हैं साधारण भाषा में। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम काम करो, युद्ध का करे कार्य कार्य करो। अब अर्जुन इस कंफ्यूजन में, अब भगवान क्या उत्तर देते हैं ये सुनिए। अर्जुन ने पूछा ना, दोनों में से मुझे बताइए, निर्णय करके बताइए कि दोनों में से मेरे लिए श्रेयकर क्या है, हितकारी क्या है, धर्म अनुकूल क्या है, शास्त्र अनुकूल क्या है। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, संन्यास कर्म योगश्च न निह श्रेयास करो भव। अब भगवान कहते हैं उभव का मतलब, वो संस्कृत भाषा में द्विवचन होता है, अंग्रेजी में हमारे पास सिंगुलर प्लूरल दो ही है, एक वचन बहुवचन, लेकिन संस्कृत भाषा में बीच में दो वचन भी है, द्विवचन है। तो यहां भगवान द्विवचन में बोल रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं संन्यास वो भी, और जो आप कर्म कह रहे हैं दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये भगवान के, क्योंकि दोनों भगवान ही बोल रहे हैं, तो भगवान ने जो बात कहेगी एक खराब है दोनों, ये तो कहना उचित नहीं है। दोनों निःश्रेयास करो भव, दोनों अच्छे हैं। तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशेष्यते, फिर भी कर्म के संन्यास से कर्म योग विशेष है। इसका मतलब दोनों रास्ते तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कर्म का छोड़कर केवल ज्ञान में स्थित होने से भक्ति वाले कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। तो भगवद गीता में यह प्रश्न बार बार उठेगा, तीसरे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, अठारहवें अध्याय में, फिर कि सब कुछ काम छोड़ के केवल भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करना ठीक है, या भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करना उत्तम है। और भगवान ने सब जगह यही कहा है, मेरी भक्ति पूर्वक सेवा के कर्म में लगना महान है, उत्तम है। तो यह निर्णय भगवद गीता का हमको समझना चाहिए कि भगवद गीता काम करने से हमको नहीं रोकता है। ये बच्चों के माता पिता को भय होता है कि लोग साधु बन गए तो काम करना छोड़ देंगे, ये भगवद गीता का सिद्धांत नहीं है। भगवद गीता और अच्छी तरह से काम करना सिखाता है। कैसे? अच्छी तरह से आत्मा के स्तर के ऊपर काम करना सिखाता है, आत्मा के हित के काम करना सिखाता है, सबके भले के काम करना सिखाता है, दूसरों को कैसे दुख से मुक्त करके सुख के रास्ते में ले जाया जाए ऐसे काम करना सिखाता है। भगवद गीता काम तो करने के लिए, भक्त हमारे 8-10 घंटे रोज मेहनत करते हैं, काम करते हैं। आप तो घर में कितने लोगों का भोजन बनाते हैं, माता जी कितने लोगों के लिए रोज भोजन बनाते हैं, 4-5 लोग घर के सदस्यों के लिए, या 200 लोगों के लिए रोज भोजन बनता है, 200 लोगों को खिलाते हैं। तो मेहनत ये ज्यादा करते हैं कि आप ज्यादा करते हैं? काम तो ये ज्यादा करते हैं, लेकिन ये काम कृष्ण भावना भावित होकर करते हैं। भक्तिमय कर्म है, इसके कर्म का कोई फल नहीं, इसके कर्म में कोई फल भोगना नहीं पड़ेगा। तो ये भगवान का उत्तर है कि दोनों अच्छे हैं, ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन इन दोनों में से जो भगवत भावना में स्थित होकर निष्काम भाव से जो कर्म किया जाए, कर्म योग, वो श्रेष्ठ है। और श्रील प्रभुपाद ने इसकी शिक्षा में लिखा है कि इस दुनिया में हमारे बंधन का कारण क्या है, हम कुछ कर्म करते हैं तो कर्म अपना फल देता है और फल को हमको ही भोगना है, तो भोगने के लिए शरीर मिलेगा तब भोगेंगे ना। तो जब भी हम भोग की इच्छा से कर्म करेंगे तो हमको नया शरीर लेना पड़ेगा उस कर्म को भोगने के लिए। जब भी हम कोई कार्य करेंगे जिसमें हमारी भोग की इच्छा है तो वो कर्म हमको दोबारा उसका भोग करने के लिए दूसरा शरीर देगा, तब हम भोग करेंगे। इसको ऐसे समझ लीजिए, हमने कितनी इच्छाएं इस दुनिया में की, सब इच्छाएं हमारी पूरी हुई हैं क्या कभी? इसका मतलब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है ना, तो उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें दूसरा शरीर लेना पड़ रहा है। जब अभी नहीं पूरी हुई तो अगली बार पूरी होंगी। ये एक धारावाहिक हम कई शरीर लेते आ रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। इसलिए भगवान को कहते हैं God is fulfilling desires of living entities since time immemorial. अनादि काल से भगवान जीवों की इच्छाएं पूरी करता आ रहा है। एको बहुनाम विदधाति कामान, एक भगवान बहुत सारे जीवों की कामनाएं अनादि काल से पूरी करता आ रहा है। और कामना करेंगे तो भोग करेंगे तो शरीर लेना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद ने एकदम भागवत के 5वें स्कंद से श्री ऋषभदेव भगवान के अवतार अपने बेटे महाराज भरत, जिसके नाम से ये देश भारत वर्ष कहलाता है, उनकी शिक्षाओं के 3 श्लोक यहां इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद ने निकाल के और सिखाया है कि जब तक आदमी इंद्रिय तृप्ति के भोग में लगा रहेगा, इस शरीर में रहते हुए जिस शरीर में हम दुख भोग ही रहे, इस शरीर में दुख भोगते हैं कि नहीं? ये शरीर असल में दुखों का एक थैला है भरा हुआ, दुखों का बैग है। कुछ चीजें इकट्ठी करके साथ रखी है, कोई बढ़ती है कोई कम होती है तो परेशानी होना शुरू हो जाती है। और हम इस शरीर में रहते हुए एडजस्टमेंट करना चाहते हैं कि दुख कम करने का कोई साधन ढूंढने का प्रयास करते। इस शरीर में रहते हुए हम एक ही प्रयास कर रहे हैं कि ये शरीर में जो दुख आते हैं वो कम कैसे करें। इसका मतलब हम इस शरीर में रह के सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक हमारी ये धारणा बनी रहेगी कि हम शरीर में होकर सुखी रहने का प्रयास करेंगे, तब तक हमारे को बार बार शरीर लेना ही पड़ेगा। ये बात अंदर उतर रही है, गले से उतर रही है। हम इस दुनिया में एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि ऐसे करने से शायद ठीक हो जाए, ऐसे करने से शायद ठीक हो जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि शरीर को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देना चाहिए। शरीर को जैसे गाड़ी को सर्विस करा के फिट रखी जाती है, ऐसे शरीर को फिट रखना चाहिए। काय के लिए? गाड़ी को सर्विस करा के फिट क्यों रखते हैं? ताकि हमारे को अपनी मंजिल पे पहुंचाए ना, जो काम कर रहे हैं वो पूरा करे ना। ऐसे शरीर को ठीक रखना चाहिए कि आत्मा, इसका जो मालिक है, उसको अपनी मंजिल के ऊपर पहुंचाए। तो आत्मा की मंजिल क्या है? जिसका अपने घर में जाना, जिसका है वहां जाके पहुंचना, ये उसकी मंजिल है। तो ये शरीर, इसलिए कहते हैं ये शरीर ऐसी नाव है जो हमको संसार सागर से पार ले जा सकती है। जन्म मृत्यु के सागर से ये नाव पार ले जा सकती है, लेकिन नाव को चलने के लिए पानी में दो चीजें चाहिए। एक तो चलाने वाला कैप्टन चाहिए। हम तो यात्री हैं, नाव में बैठे हैं, यात्री हैं, लेकिन नाव चलाने वाला तो कोई चाहिए ना। और दूसरा, कैप्टन के पास जो सागर है उसमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए, उसका मैप होना चाहिए। कहीं कुंड है, कहीं पहाड़ है, चट्टान नीचे, उसका पता होना चाहिए कि कहां से जाना चाहिए, कहां से नहीं जाना चाहिए। नहीं तो मंजिल पे नहीं जा सकती है। सागर से पार हो सकती है क्या नाव? तो जो चलाने वाला है उसको रास्ते का पता होना चाहिए। फिर थोड़ा सा सहारे की हवा भी होगी तो वो अपने पुराने जमाने में नाव वाले ऊपर से जो जो कपड़ा बंधा होता था उसको हवा के रुख में खड़ा करते ताकि तेजी से चले। तो ये शरीर रूपी नाव है, ये गाड़ी है, इसका कैप्टन जब तक कोई गुरु नहीं बैठता है इसको सदमार्ग के ऊपर चलाने के लिए, और शास्त्र रूपी फेवरेबल विंड, सहायक हवा का रुख और नक्शा मानचित्र भवसागर का कि कहां डूब जाएगी अगर ध्यान नहीं दिया तो, कहां टकरा जाएगी ये पता नहीं होगा तो संसार सागर से पार नहीं होया जाएगा। तो यह शरीर गाड़ी है, यंत्र रूढ़ानी मायया, भगवत गीता में इसको यंत्र कहा। यंत्र का मतलब मशीन है, यह मशीन है, गाड़ी है, हम इसमें मुसाफिर हैं। तो गाड़ी की सर्विस करना तो ठीक है, लेकिन मैं गाड़ी तो नहीं हूं ना। गाड़ी की कोई मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल है। गाड़ी की तो कोई मंजिल नहीं, जहां ले जाओगे वह चली जाएगी। तो यह बात है कि जब तक भोग की, इंद्रियों की तृप्ति रहेगी तब तक बार बार शरीर लेना पड़ेगा। फिर ऋषभदेव कहते हैं, महाराज ऋषभदेव कहते हैं, जब तक मानव आत्मा के बारे में जानकारी का इच्छुक नहीं होता तब तक सारी जिंदगी की मेहनत उसकी बेकार है। All endeavors are failure, शब्द क्या लिखे हैं? One is considered to be failure in life as long as he makes no inquiry about his real identity. सारी जिंदगी का परिश्रम, मेहनत, कमाई, धन, गाड़ियां, मोटरें, घर, ये सब किसी काम के नहीं है अगर आत्मा के विषय में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि शरीर छूटने के बाद सब कुछ यहीं छूट जाएगा। लेकिन मैं तो यहां, मैं तो शरीर से अलग हूं, तो मैं कहां जाऊंगा इसका पता नहीं किया तो सब कुछ बेकार है। और फिर ऋषभदेव कहते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, ये ध्यान में देनी चाहिए। Although the mind may be engrossed in fruitive activities and influenced by ignorance, ये ऐसी बात है, हम जब हरे कृष्ण जपते हैं ना तो बहुत से लोग, आप सब कहेंगे हरे कृष्ण जपते हैं, हमारा मन कहीं बाहर जाता है, ये सत्य है ना। और ये कह रहे हैं भगवान ऋषभदेव कि मन आपका बहुत जन्मों से बाहर जाने का आदि है, जाने दीजिए, ये आपके रोकने से रुकने वाला नहीं है, ऐसे इसका कहने का भाव ये। और फिर भी वन मस्ट डेवलप लव फॉर डिवोशनल सर्विस टू वासुदेव, भगवान को फिर भी भगवान वासुदेव के लिए प्रेम पैदा करना चाहिए। इसका अर्थ यही है, जब हरे कृष्ण हम जपते हैं तो हमारा मन इंद्रिय तृप्ति के भोग की जगहों पे जाएगा। कभी बोलेगा ऑफिस का काम रह गया है, कभी बोलेगा घर का काम रह गया, कभी बेटे का शादी की बात याद आएगी, कभी बेटी के दहेज की बात, बहुत सी बातें मन में आएंगी। लेकिन इनके आते हुए भी हमको अपने माला के जपने में प्रयास जारी रखना चाहिए। ये बात कितना, ये भगवान जब बोल रहे हैं तो वो जान के बोल रहे हैं कि आपका मन, आप कहो कि अब अभी हम भगवान का नाम जपें और मन उसमें लग जाए, ये संभव नहीं। लेकिन फिर भी भगवान का नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए तो आगे चल के भगवान के नाम में हमारा प्रेम हो जाएगा। तो जहां प्रेम होगा वन मन वहीं जाएगा, जब प्रेम होगा तो मन वहीं जाएगा। माइंड गोस वेयर, वैसे मन अभी हमारा कहां जाता है, जहां पैसा जाता है वहां मन जाता है। वेयर मनी गोज माइंड गोज। प्रभुपाद ने इसलिए क्या किया, बोला आपको हम आजीवन सदस्य बनाते हैं इस्कान के। बोलो क्यों, बोला आप जब भी आओ, कहीं दूर रहते हो बंबई में दिल्ली में, हमारे मंदिर में आना। तो आपका पैसा दे दिया लाइफ मेंबर बनने के लिए, तो अभी आपका मन क्या कहेगा, हम इस्कान के लाइफ मेंबर हैं, तो अब जाएंगे तो दिल्ली में इस्कान मंदिर में रहेंगे। अब आपका मन, मन भगवान को दर्शन तो करना ही पड़ेगा, मंदिर में आएंगे तो प्रसाद तो खाना ही पड़ेगा। तो देखा कि इस दुनिया के लोग जहां पैसा जाता है वहां मन जाता है, तो पैसा भगवान की सेवा में लगा तो मन अपने आप भगवान की सेवा में लगना लग जाएगा। अब मंदिर में ही तो आएगा ना। ये इसको कहते हैं बुद्धिमान, साधु बुद्धिमान होता है, वो भगवान की भक्ति में कैसे लगाना है उसकी कला जानता है। और कुछ भक्तों ने अजामिल को कहा कि ये कुछ देने वाला तो है नहीं, पापी है, अत्याचारी हो गया है, वेश्या का गमन कर रहा है, वेश्या घर में बैठी है, अब देना तो कुछ नहीं देगा, कुछ बोलो तुम ले लो कुछ हमसे, फिर सबसे ले ही रहा है लूट के, बोले तुम हमसे एक चीज ले लो। बोलो क्या, बोला हमारे से ये राय ले लो कि तेरे बेटे का नाम नारायण रखना। अच्छा, ये तो लेने में कोई खराबी नहीं, नारायण का नाम रख लिया बेटे का, और नारायण नारायण इतना किया कि बेटा था, बेटे से तो प्रेम था ना। अभी बेटे का नाम नारायण है तो आप कितनी बार दिन में लेंगे, हाँ जी, नारायण इधर आओ, नारायण उधर जाओ, नारायण चप्पल लाओ, नारायण पानी लाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो, इतना तो हम भी नहीं जपते, उससे ज्यादा तो अजामिल नारायण नारायण करने लगा है। जितना करता है नारद नारायण नारायण, उतना तो वो अपने पुत्र के मोह के कारण मन उसका नारायण नारायण में लग गया। तो अंतकाल में वो नारायण के नाम के उच्चारण के कारण भगवान नारायण के दूतों ने उसको, विष्णु दूतों ने यम दूतों से बचा लिया। तो कैसे भी नाम, बच्चों का भी घर में भगवान के नाम पे रखेंगे तो भगवान के नाम का उच्चारण होगा। पुराने जमाने में के लोगों के नाम मिलते हैं गोपीनाथ, हाँ, गोविंद, गोविंद प्रसाद, राम प्रसाद, गोपाल प्रसाद, राधा वल्लभ, ऐसे नाम हुआ करते थे। अब कैसे नाम है, पिंटू सिंटू जेकी मेकी, अब इसका नाम लेने से क्या होगा। किसी को बोले तुम्हारा नाम गोपाल रखेंगे, बोला ये बहुत पुराना नाम है, ये नहीं रखना है, हमारा गोगू रखेंगे, गोगू। भोगू गोगू ऐसे रखेंगे। गोपाल रखने में बहुत बड़ी तकलीफ होती। एक महात्मा कहता था, अगर मानो के नहीं मानते हैं घर वाले बच्चों का नाम, तो जो काम करने वाला घर में लड़का रखी लड़की रखा है उसका नाम तो रामू रख दिया करो, रामू ये कृष्ण, 10 बार 20 बार नाम तो जब हो जाएगा ना ऐसे, तो उसका नाम अपना ही रख दिया करो, किसी का नाम अच्छा रख दिया करो भगवान के नाम से, तो कैसे भी भगवान के नाम में आपकी थोड़ा आसक्ति होने लगे। अब श्री प्रभुपाद जी इसके भावार्थ में लिखते हैं, कैसे भी वासुदेव की तरफ हमारा थोड़ा भी आकर्षण हुआ तो फिर संसार के बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। कैसे, तो इसलिए वासुदेव के लिए काम करना चाहिए। आज आप बताइए, जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो अर्जुन का नाम याद आता है कि नहीं आता है, क्यों, क्योंकि अर्जुन ने कृष्ण के लिए काम किया। कृष्ण के लिए अर्जुन ने काम किया इसलिए कृष्ण का नाम अर्जुन के नाम से जुड़ गया। और ये जो फोटो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का आपको हर जगह भगवद गीता के ऊपर ऐसा सुंदर छपा हुआ मिलेगा, इसको जरा थोड़ी देर के लिए ध्यान दो। पूरे त्रिलोकी का नाथ नारायण आदि नारायण, गोलोक धाम का अधिदेव, दुनिया के अंदर द्वारकाधीश वृंदावन ईश्वर, जिसके लाखों करोड़ों असंख्य भक्त जप कर रहे हैं, वो एक व्यक्ति के साथ अपना फोटो निकाल के ऐसा सारी दुनिया को दर्शन, एक ही व्यक्ति के। इतना भाग्यशाली अर्जुन है कि एक व्यक्ति को भगवान ने बैठ के 1.5 घंटा भगवद गीता की शिक्षा दी। भगवान के साथ फोटो छपाने के, ये अर्जुन का फोटो भगवान के साथ छपा हुआ है कि नहीं छपा हुआ है? 5000 साल पुराना है, अभी भी जगह जगह पे आपको मिलेगा तो आप आदर के साथ देखोगे, सही है कि नहीं है? आजकल भी लोगों को बड़े आदमी के साथ फोटो छपाने का बहुत शौक है, है ना? खर्चा करना पड़ता है ना, मंत्री मंत्री के साथ, प्रधानमंत्री के साथ फोटो छपाना, हाथ मिलाकर कितना खर्चा करना पड़ता है। बड़ी अच्छी दावत करनी पड़ेगी, कोई बड़ी पार्टी करेंगे तब फोटो छपेगा ना, और फोटो छपेगा तब हम दूसरे को फोन करके बोलेंगे हमारा फोटो देखो अखबार में आया, यही ना? और अखबार में जब हमारा फोटो छपता है तब हम कितने खुश होते हैं। लेकिन 2 घंटे के बाद अखबार जब रोड के ऊपर छोले भटूरे वाले की दुकान पे जाती है और हमारे थोपड़े के ऊपर छोला और भटूरा पड़ता है, तब हमारे फोटो का क्या हाल होता है? और इतना भी नहीं, फिर छोले भटूरे वाला पर जो अखबार का पेपर हमारे फोटो वाला नीचे गुरता है और कुत्ता उसको चाटता है, तब हमारे फोटो की दुर्गति होती है, क्योंकि थोड़े पैसों का फोटो है। और अर्जुन ने ये फोटो छपाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी, सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया। तो जो सब कुछ भगवान को अर्पण करता है उसका फोटो भगवान के साथ अमिट हो जाता है। इस दुनिया के फोटो हमारे बहुत क्षणिक है, लेकिन ये कितना सुंदर फोटो छपा है। तो वासुदेव के लिए शब्द है यहां, वासुदेव के लिए काम करना, प्रीतिर्न यामई वासुदेव, जब तक प्रीति वासुदेव से नहीं होगी, न मुच्यते देह योगे न तावत, तब तक संसार के बंधन से नहीं छूटेगा, शरीर लेने के चक्कर से मुक्त नहीं होगा। तो कैसे भी वासुदेव के लिए हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, उसके लिए हृदय को पवित्र करना चाहिए। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इसलिए हमारे को काम नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कृष्ण भावना में काम में लगे रहने चाहिए, क्योंकि जो कर्म योग है उसका एक फल है अंतःकरण की शुद्धि। कर्म योग अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण किसको बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं इंद्रियों को, हाथ पांव इसको भी कर्ण बोलते हैं, ये बाहरी कर्ण है, बाहर की इंद्रियां है। अंतःकरण का मतलब अंदर की इंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार, इसको अंतःकरण बोलते हैं। इसको शुद्ध करने के लिए भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए, भगवत कृष्ण भावना भावित कामों में लगना चाहिए। तो आप घर में बैठे हुए कृष्ण भावना भावित कामों में कैसे लगेंगे? क्या साधन है इसका? हर एक गृहस्थी अपने घर में एक भगवान का छोटा मंदिर बना दे, भगवान को रोज भोग लगाए जो घर में पकता है, वो थोड़ी देर के लिए परिवार के सब लोग बैठकर भगवान के नाम का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करें। और संडे संडे मंडे मंडे नहीं, रोज थोड़ा सा भागवत भगवत गीता का चर्चा घर में होनी चाहिए। ये चार चीजें घर में करने से हमारा घर वैकुंठ बन जाएगा, हमारा घर भगवान का मंदिर बन जाएगा, हमारा घर दुखों से मुक्त हो जाएगा और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। हर ये चार काम तो हर घर में होने चाहिए। ये प्रभुपाद जी भगवद गीता के अंदर लिखी है, गृहस्थी वैसे तो बंधन में फंसा हुआ है, लेकिन ये चार काम अगर घर में करता है तो आस्ते आस्ते वो बंधन से मुक्त होने लगता है। और फिर आप सब अपने घरों में रहते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, तो कैसे भी कर्म योग का अर्थ है आप अपने कर्म के फल को स्वयं निश्चित रूप से अपने पालन पोषण के लिए तो रखिए, लेकिन उसका कुछ भाग भगवान श्री कृष्ण के प्रचार के सेवा हेतु लगाइए। ये एक मन में पहले से ही लकीर लगा दीजिए कि मेरा इतना महीने का बचत है, समझ लो मान 5000 रुपया मेरा सेविंग है मंथ का, तो उसमें से एक 1/4 मेरे को रखना है इमरजेंसी के लिए, कभी मेरे को जरूरत पड़े तो, 1/4 मेरे को इन्वेस्टमेंट में लगाना है ताकि दोबारा उसमें से कुछ काम धन आने लगे, 1/4 मेरे को धर्म अर्थ भगवान की सेवा में लगाना है। तो एक मन से कुछ अपने प्रॉफिट का भाग, बचत का भाग भगवान की सेवा में लगाने का संकल्प कर देना चाहिए। पुराने बुद्धिमान लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा धर्म के लिए पहले से निकाल के रखा है, साल में हिसाब करते हैं ये धर्म का है, धर्म के खाते में पड़ा है। उस खाते से किसी को दान देने में कोई कष्ट नहीं होता क्योंकि जेब से नहीं जाता है, पहले ही वो काट के निकाल के रखा हुआ है। तो ऐसा हर एक व्यक्ति को, हर गृहस्थी को, कैसे भी गृहस्थी का एक धर्म, सबसे उत्तम धर्म गृहस्थी का जो अन्य धर्मों के साथ है वो दान धर्म गृहस्थी में आता है। क्योंकि ब्रह्मचारी वो तो पढ़ता है, कमाता नहीं है, वानप्रस्थ वन में रहता है, कोई धंधा नहीं करता है, सन्यासी तो सब कुछ छोड़ के चला गया, चार आश्रम में केवल ग्रस्त आश्रम में वो तीनों को पालता है, बच्चों को पढ़ाई का खर्चा देते ही हो के नहीं देते हो, देना ही पड़ता है, तो बच्चे तो नहीं कमाते हैं। तो ये ब्रह्मचारी आश्रम तो आपको पालना है। ऐसे ग्रस्त आश्रम का धर्म है कि जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं उस कार्यों में, जो हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनकी प्रति एक भाग पूरा। आज कहीं बैठे थे हम अस्पताल में, एम्स में, दो तीन चीफ इंजीनियर थे, कोई बड़े लोग थे, वो कह रहे थे धन तो हम बहुत कमा रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा पैसा हमारा अस्पतालों में खर्चा हो रहा है, दवाओं के ऊपर खर्चा हो रहा है। ये सच है कि झूठ है? ज्यादा से ज्यादा खर्चा हमारा दवाओं के ऊपर और अस्पतालों में हो रहा है। तो हमने तो उसका उत्तर सरल सा दिया कि पहले देखो, सरकार को तो एक हिस्सा देना पड़ता है टैक्स के रूप में, वो तो अभी भी ले रही है, चाहे टैक्स ले या घूस ले, कुछ भी ले, पैसा तो जाएगा ही जाएगा, वो छोड़ने वाले नहीं है। मजदूर तनख्वाह लेता है, क्षत्रिय टैक्स लेता है, सरकार टैक्स लेती है, सबसे ले रही है ना, मजदूर तनख्वाह लेता है वो तो आज ले रहा है, किसी को छोड़ तो नहीं रहा है, लेबर जो है उसको तनख्वाह देनी है, क्षत्रिय को टैक्स देना है और ब्राह्मण को दान देना है। तो हमने टैक्स देना बंद नहीं किया, देना पड़ेगा, तनख्वाह देना बंद नहीं किया, देना पड़ेगा, लेकिन दान देना बंद कर दिया। जब से दान देना बंद कर दिया तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा पैसा इधर जाने दो, कहां, दवाओं के दुकान पे, अस्पतालों में जाने दो, जा रहा है, दिख रहा है सामने, सामने दिख रहा है। और हमें, हम तो इस प्रोफेशन के आदमी, हम 30 साल पीछे जाके डॉक्टरी को देखते हैं, जहां हमारा 10 रुपया खर्च होता था वहां आजकल 10 लाख रुपया खर्च हो रहा है, 10 रुपये की जगह पे 10 लाख रुपया, ये हम कैलकुलेशन करके देखते हैं तो हमको ऐसे लगता है, और लोग दे रहे हैं। तो ये हमारा धर्म है कि जब तक हम ऐसे जीवन की प्रक्रिया नहीं बनाएंगे तब तक भगवान की तरफ हमारी प्रेम की भावना जागेगी नहीं। अब भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं, नेह जान लो सनित्य सन्यासी, वो सदा के लिए सन्यासी है, यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात परमुच्यते। अब भगवान ने बहुत सुंदर कह दिया कि सब काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम सब करते रहो लेकिन किसी से द्वेष मत करो, न द्वेष्टि न कांक्षति, और नहीं कुछ मुझे मिलेगा यह भी इच्छा नहीं है। इसका मतलब किसके लिए काम कर रहे हैं? भगवान के लिए काम कर रहे हैं। जब मुझे कुछ प्राप्त करने की इच्छा है नहीं, न मुझे कुछ जाने की परवाह है, तो फिर मैं दुखी क्यों हूंगा? फिर तो मैं संसार के बंधन से अपने आप मुक्त हो जाऊंगा। भगवान कहते हैं यह तुम जान लो, जो भगवत भावना में होता है वो न तो किसी से द्वेष करता है और न ही कुछ फल की इच्छा करता है कि मुझे कुछ मिलेगा। वैसे भी फल हमारे हाथ में तो है नहीं, फल तो देने वाला भगवान है और फल भगवान सबको देता है, नहीं देता है ऐसा नहीं, सबको देता है अपने कर्मों का फल। तो फिर हम क्यों मांगे फल, कर्म का फल हम भगवान को ही अर्पण कर देते हैं। ये इसलिए एक शब्द हुआ करता था पहले, कोई काम करते थे हम कहते श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, मैंने ये श्री कृष्ण को अर्पण किया, केवल इतने कहने से हमारा सब भार उतर गया। भगवान श्री कृष्ण अर्पण मस्तु, मैंने भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया, हमें किसी ने माला अर्पण की, हम कहते हैं अभी आपने कहा हमने तो गुरु जी का भाई गुरुओं के मंत्र का उच्चारण किया कि ये आपकी कृपा से हमको मिली है, इसके अधिकारी आप हो, हमने स्वीकार किया और ये हम आपको अर्पण करते, जो मुझे मिल रहा है ये भगवान आपके लिए है, आपके कारण है, केवल आप अपने आप को भार उतार दो, सब सुखी हो गए एकदम। अब जब अगर आपने इसके मिलने के ऊपर खुश हो गए और न मिलने के ऊपर सामने वाले ने मेरे को माला नहीं पहनाई तो आपको क्रोध आ गया अगर, तो फिर आप संसार में बंधन में पड़ जाओगे। इसलिए कैसे भी ऐसा अपना जीवन सरल बना देना चाहिए कि ऐसे किसी बात में बंधना नहीं चाहिए। अब भगवान एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, सांख्य योगो पृथक बाला, वो बच्चे होते हैं जो, बाला का मतलब जो कम बुद्धि वाले बच्चे हैं वो सांख्य को अलग समझते हैं और कर्म योग को अलग समझते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला न प्रवदन्ति पंडित, जो बुद्धिमान है वो उसको अलग नहीं मानते। एकम अपि सांख्यम च योगम च, एकम अपि आस्थित सम्यक उभयो विन्दते फल, एक में लगो दोनों का फल मिलेगा, दोनों एक ही है। बच्चा है जो एक को अलग समझता है दूसरे को अलग समझता है। इसके भावार्थ में प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, सांख्य योग ज्ञान या सन्यास। देखो सांख्य योग और ज्ञान योग एक ही बात है और ये सन्यासियों का धर्म है। सांख्य योग या ज्ञान योग ये सन्यासियों का धर्म है। वो क्या करना चाहते हैं, वो ढूंढना चाहते हैं कि यह संसार नेति ये नहीं है, इसका आदि मालिक कौन है, कहां पहुंचेंगे, भगवान इसका आदि मालिक है, एक ब्रह्म सत्य है, यही कहेंगे ना, बाकी सब शास्त्र है ये ठीक नहीं है ये ठीक, ऐसे करते जाएंगे ना। तो इसका अर्थ है कि आदमी पेड़ को ऊपर देखेगा, फल को देखेगा तो ढूंढेगा क्या, जड़, भाई इसका इसका बीज कहां है, जड़ कहां से निकली है, तो पेड़ की जड़ को ढूंढना यह सांख्य योग है। भाई फल कहां से आया, आम का, आम के पेड़ से, आम का पेड़ कैसा है, भाई ये तो डालियां है, ये तो पत्ते है, ये ठीक नहीं है, ये जड़ है, वो यहां से फल, यहां बीज डाला, यहां से जड़ निकली, तो जड़ ही पेड़ का, पेड़ की जड़ ही समुख्य है, जड़ है तो पेड़ है, जड़ गई तो पेड़ गया, तो जड़ को ढूंढने को सांख्य योग बोलते हैं। संसार की जड़ क्या है, भगवान, विष्णु से निकलता है संसार, इसलिए भगवदगीता के 15वें अध्याय में लिखा है ऊर्ध्व मूल, जड़ ऊपर है, जड़ नीचे नहीं है संसार रूपी वृक्ष की, जड़ तो ऊपर है ब्रह्मा जी के द्वारा, ये संसार की, ब्रह्मा जी कहां से निकला, विष्णु की नाभि से, तो भगवान विष्णु जड़ तो वहां है और संसार में पेड़ की डालियां हैं, लेकिन संसार रूपी पेड़ की जड़ तो विष्णु है। तो सांख्य योग में जड़ को ढूंढना है और भक्ति योग में जड़ में पानी डालना है। अब दोनों जड़ को ही तो ढूंढ रहे हैं ना, तो एक भगवान विष्णु को ढूंढने का प्रयास कर रहा है और एक भगवान की सेवा में लगा हुआ है, तो दोनों एक ही तो काम कर रहे हैं, दोनों एक जगह ही तो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान यहां कहते हैं इनको दो अलग समझना भी ठीक नहीं है, एक भगवान को ढूंढ रहा है, एक भगवान की सेवा में लगा हुआ है, एक पेड़ की जड़ को ढूंढ रहा है, एक जड़ में जल दे रहा है। तो भक्ति रूपी कर्म पेड़ में, पेड़ की जड़ में पानी देने के बराबर है, और सांख्य योग या ज्ञान योग पेड़ की जड़ को ढूंढने के बराबर है। वैसे बुद्धिमान इसलिए उत्तम कहा गया है कर्म योग को, क्योंकि जड़ में पानी देने से पेड़ सुखी होगा, केवल जड़ को ढूंढने से काम नहीं होगा, हमने जड़ तो ढूंढ लिया लेकिन जड़ में पानी नहीं दिया तो कोई लाभ तो नहीं हुआ, जानकारी तो पूरी हो गई लेकिन हम सेवा में तो नहीं लगे। तो आत्मा अलग है शरीर अलग है यह तो जान लिया हमने, आत्मा भगवान का अंश है यह भी जान लिया, अब आत्मा का स्वरूप है कि भगवान की सेवा करना यह शुरू नहीं किया तो फिर लाभ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो केवल ज्ञान हमारे को मुक्त नहीं कर सकता, जब तक हम आत्मा के धर्म का पालन नहीं करेंगे, और आत्मा का धर्म है सेवा करना और प्रेम करना, आत्मा का धर्म है प्रेम और सेवा। आत्मा सनातन है, नित्य है, उसका धर्म सेवा और प्रेम भी सनातन है, नित्य है, और यह सेवा और प्रेम हम इस वक्त दुनिया की कर रहे हैं जो नित्य नहीं है। हम इस वक्त सेवा तो कर ही रही है, कोई नहीं कह सकता कि मैं सेवा नहीं करता हूं, प्रेम नहीं करता हूं इस दुनिया में, किसी न किसी की सेवा और किसी न किसी से प्रेम तो कर ही रहे हैं हम, चाहे देश से करें, चाहे किसी आदमी से करें, चाहे किसी व्यक्ति से करें, बेटे से करें, बहू से करें, पत्नी से करें, लेकिन प्रेम तो कर ही रहे हैं, सेवा तो कर ही रहे हैं। कोई दुनिया में नहीं कह सकता है मैं सेवा और प्रेम नहीं करता हूं, लेकिन आत्मा का धर्म सेवा और प्रेम है, वो तो नित्य है, और हम सेवा कर रहे हैं वो नित्य नहीं है चीज, इसलिए हम दुनिया में दुखी है और परेशान होते हैं और आखिर में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने प्रेम और सेवा में। इस दुनिया में जिससे भी प्रेम किया और सेवा की, अंत में हम सदा के लिए ही विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उससे हमारे को सदा के लिए वो रह नहीं सकता है। प्रेम तो मैंने किया बहुत पिताजी से, लेकिन पिताजी नहीं रहे तो अब क्या करूंगा। इसलिए सनातन जीव का धर्म सनातन सेवा और प्रेम है। ये अगर सनातन पुरुष भगवान के लिए हो जाए, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो यह प्रेम और सेवा जीव का धर्म है, हमारा धर्म है, हम जीव आत्मा है। ये जब भगवान की प्रति कृष्ण प्रति हो जाए, इसी को कृष्ण भावना बोलते हैं। और ये पांचवा अध्याय पांचवा श्लोक है, यत सांख्य प्राप्यते स्थानम, जहां ज्ञानी पहुंचता है तद योगिरपि गम्यते, वहां भगवान के लिए काम करने वाला भी वहीं पहुंचता है। एकम सांख्यम च योगम च, संख्या भी एक ही बात है, योग भी एक बात है। यह पश्यति स पश्यति, जो इसको देखता है वो ही बुद्धिमान है। इसका इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ वही है जो अभी बताया, कि ज्ञान वाले भी भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। ज्ञान वाले भी पहले आत्मा को ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, फिर भगवान को ढूंढते हैं जो आत्मा का स्रोत है, आत्मा का आश्रय है, आत्मा जिसका अंश है उसको ढूंढते। तो आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार, इस दो चीजों को ज्ञान के मार्ग में इसको ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। प्रकृति जड़ है, आत्मा अमर है, आत्मा परमात्मा का अंश है, ये बात जानने को ज्ञान बोलते हैं। लेकिन आत्मा भगवान का अंश है तो उसको भगवान के साथ संबंध क्या है? अच्छा, इसको ऐसे सरल भाषा में समझिए, बेटा बाप का अंश है, ये सब मानते हैं ना। बेटे को क्या बोलते हैं? मेरा अंश है, यही कहेंगे, हमारा वंश चलाएगा, मेरा अंश है, यही कहेंगे ना। अब यही बेटा कहे कि मैं बाप का अंश हूं, लेकिन बेटे और बाप का जो संबंध है उसमें क्या चीज मुख्य है? बाप किस चीज में खुश होगा, बेटा क्या करे जो बाप को अच्छा लगेगा? सीधा सा है कि नहीं है? जो बच्चा सेवा करेगा वही पिता को संतुष्ट करके सुखी होगा, ये ठीक है कि नहीं? जब भगवान को हम कहते हैं तुम्हें वो माता च पिता, तो हम कहते हैं तुम ही हमारे पिता हो, ये तो रोज कहते हैं तुम ही हमारे पिता हो। लेकिन कहना पिता और सेवा करना, इन दोनों में अंतर है। तो ज्ञान वाले केवल कहते हैं तुम हमारे पिता हो, लेकिन सेवा नहीं करते, क्योंकि कर्म का तो त्याग करके बैठे हुए। इसलिए पिता कहना भगवान को मैं तुम्हारा बालक हूं, ये तो ठीक है, तुम पिता हम बालक तेरे, ये तो अच्छा है, लेकिन बालक का भी तो कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है उसका पालन पोषण करना। भगवान ने हमारे जीने के लिए सब सुविधाएं तो दे ही दी है दुनिया में, सांस लेने के लिए हवा मुफ्त में दे दी है, हाँ जल बरसा रहा है, पानी दे रहा है, मीठा सब कुछ दे ही रहा है, तो उसने हमारे पालन पोषण की तो व्यवस्था कर ली है पिता के नाते। अब हमारा बालक के नाते क्या कर्तव्य है, क्या धर्म हमारा है? अब ये हमको विचार करना चाहिए ना। हमारा धर्म है कि अपने पिता की सेवा में लगना। ऐसे हर पिता ये चाहते हैं, आप तो माता पिता है ना, आप बच्चों से क्या चाहते हैं? आपके बच्चे आपसे प्रेम करें, आपकी सेवा करें, यही चाहते हो और कुछ चाहते हो? इस दुनिया का ये परिभाषा है कि नहीं है? वो दूसरी बात है, कोई बच्चा आजकल नहीं करता है, ना प्रेम करता है ना सेवा करता है, यह भी सत्य है। क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है कि हम भगवान से नहीं करते। अगर हम भगवान का सेवा और प्रेम करना शुरू हो जाए, कर लें, तो हमारे बच्चे भी हमसे प्रेम और सेवा अपने आप कर लेंगे। जब हम ही नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे कहां से करेंगे? हम कहते हैं भगवान हमारा पिता है, उसकी सेवा हम नहीं करते हैं, तो हमारे बच्चे इस दुनिया में देखते हैं वो, हम उसके पिता हैं, हमारी सेवा क्यों करेंगे? ये बात समझ में आ रही है कि क्यों नहीं आजकल हमारे यहां संस्कार क्यों कम होते जा रहे, बच्चों के अंदर ये संस्कार क्यों नहीं है आजकल के? कारण क्या है इसका? इसके कारण यही है कि हम भगवान की भक्ति और सेवा के कामों से मुख मोड़ के बैठे हैं, तो हमारे बच्चे हमसे मुख मोड़ के बैठे। तो इसका मतलब हमारे समाज के सुधारने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमारे को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हम भगवान की भक्ति और प्रेम की सेवा में लगेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप जो हमारे आश्रित है वो हमारी सेवा में लगेंगे। इस दुनिया में जो
जो देखेगा वैसे ही करेगा, और भगवान उनके हृदय में बैठे हुए, भगवान कहीं और तो बैठे हुए है नहीं, भगवान आपके हृदय में भी है, उनके हृदय में भी है। जब भगवान देखेगा आपके हृदय में आप भगवान से बड़ी श्रद्धा के साथ प्रेम और सेवा कर रही हैं, रोज भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, प्रसाद अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान बच्चों के हृदय में बैठे हुए उनको कहेंगे कि अब माता पिता की सेवा करो। कोई उनको कहने के लिए भगवान को कहीं यहां से आना नहीं पड़ेगा, पहले ही दिल में बैठे हुए। ऐसे प्रभुपाद जी जब यहां से अमेरिका गए तो कह रहे थे कि मैं जिस देश में जा रहा हूं, और मैं 70 साल का बूढ़ा हूं, और मैं जिस देश में जा रहा हूं वहां जो उन लोगों को मालूम यह भी नहीं है कि कृष्ण क्या है, भक्ति क्या है, भगवत गीता क्या है, यह भी नहीं जानते। अब मैं जाके वहां कीर्तन करूंगा, वो मेरी बात सुनेंगे, ये मैं नहीं समझता हूं कैसे सुनेंगे, लेकिन हे कृष्ण आप सबके हृदय में तो बसते हो ना, तो फिर आप उनको मेरी बात समझाने की बुद्धि देना। प्रभुपाद ने भगवान को ऐसे प्रार्थना की कि मैं आपकी सेवा के लिए जा रहा हूं, आपके भक्त मेरे गुरु महाराज ने आपके नाम के प्रचार के लिए कृष्ण मेरे को यहां भेजा है, तो अब कृष्ण मेरे को इस काम को सफल करना है, तो आप सबके हृदय में बैठे हो ना, अमेरिका के हृदय में भी तो आप ही तो इसके हृदय में बैठे हो ना, आप तो इसकी भाषा भी जानते हो, मेरी मेरे भाव को भी जानते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके नाम का प्रचार हो तो इनके हृदय में ऐसी प्रेरणा दो ये मेरी बात समझे और भक्त बन जाए, और भक्त बन गए, और बहुत लाखों बहुत लोग भक्त बन गए, तो भगवान तो उनके हृदय से उनको प्रेरणा दे ही दी ना। तो जब बाहर के देश के लोगों को जिनको प्रभुपाद जानते नहीं थे, प्रभुपाद के बेटे नहीं थे, लेकिन वो भगवान प्रभुपाद के बेटों से ज्यादा उन्होंने प्रभुपाद की सेवा की, प्रभुपाद की सेवा उन लोगों ने अंतिम समय में ऐसी की जो बेटा अपने बाप की नहीं करता है, उनको पालकी में कंधे में उठा के भगवान का दर्शन कराने के लिए ले जाते थे रोज। तो कैसे क्यों कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने उसके हृदय में बैठ के प्रेरणा दी कि इसने मेरी सेवा की, आप इसकी सेवा करो। तो बहुत सरलता से अगर हम चाहते हैं अपने घरों में, अपने परिवार में हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, तो हमको भगवान की सेवा करने का निश्चय करके नेम लेना चाहिए, और इसको कर्म योग बोलते हैं, भगवान के लिए कर्म करना, इसको कर्म योग बोलते हैं। और कर्म योग में आप अपने घर में चार चीजें करें, और भगवान के प्रचार के कार्य में जैसे यथा आपकी जो भावना है उससे उसमें सहयोग करें, पुस्तक वितरण आदि भगवद गीता करना है ये कार्य करने में सहयोग करें, यह भी आपका कर्म योग हो जाएगा भगवान, लेकिन ये भक्ति हो जाएगा उससे और बढ़कर, कर्म योग आगे बढ़ेगा तो फिर भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ये योग की सीढ़ी है, कभी और समय चर्चा करेंगे, अभी समय को यहां समाप्त करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। आज की कथा से एक ही बात सीखनी है, भगवद गीता काम छोड़ने के लिए नहीं करती है, कहती है, लेकिन कृष्ण भावना में निश्चित रूप से काम करने का शिक्षा देती है। काम छोड़ के ज्ञान प्राप्त करना भगवद गीता का संदेश नहीं है, ज्ञान में स्थित होकर भगवान के लिए काम करना गीता का संदेश है। अर्जुन ज्ञान प्राप्त करके गीता का कृष्ण के लिए कार्य किया, इसलिए अर्जुन अमर हो गया। तो हमको गीता सीख के काम में लगना है, काम छोड़ना नहीं है, लेकिन जो काम हम करेंगे वो भक्ति हो जाएगा, उस काम का कोई फल हमको भोगना नहीं पड़ेगा, न सुख न दुख, न दोबारा कोई शरीर लेना पड़ेगा, जिसके लिए काम करेंगे उसी के पास चले जाएंगे, जिसके लिए काम करेंगे वही हमारा पालन पोषण करेगा, वही हमारे का देखभाल करेगा। कृष्ण के लिए काम करेंगे तो इस दुनिया में भी कृष्ण की सेवा में रहेंगे, सुखी रहेंगे, और फिर दुनिया से जाएंगे तो वापस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाएंगे। ये इस चार श्लोकों का अर्थ है। हरे कृष्ण। किसी का कोई जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हाँ बोलिए कौशल। एक मिनट मरने से पहले भी उसको भगवान की याद आ गई और नाम उच्चारण किया तो फिर सारे इच्छाएं और उसके फल खत्म हो गए और वो भगवान के पास चला जाएगा। 2 साल बहुत ज्यादा है, 1 मिनट पहले, लेकिन 1 मिनट भगवान का नाम याद आए इसके लिए पूरी उम्र लेना पड़ेगा तब याद आएगा, अभ्यास करेंगे तब याद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो अंत में नहीं आएगा, तभी आएगा जब अभ्यास करेंगे। और कोई प्रश्न किसी का?
हम कैसे प्रेम करें, हम तो जानते
हैं। ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, इसलिए पहले भगवान के बारे में जानने का साधन है शास्त्र को सुनना। अब ये क्लास, ये मंदिर बनाने का एक ही हमारा उद्देश्य है, ताकि आपको भगवान के बारे में जानकारी दी जाए कि भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं। ऐसे लिखा है, श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान राधा कृष्ण के स्वरूप में आए, तब कहा कि जीव अपने आप इस दुनिया से तर के पार हो जाए ये संभव नहीं है, इसलिए भगवान ने कृपा करके शास्त्र दिया है और साधु को भेजा है और स्वयं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठा है। भगवान के बारे में साधु से, शास्त्र के बाप से, शास्त्र को सुनिए। भगवान के बारे में जानने के लिए साधु से शास्त्र को सुनिए, तो भगवान बैठा हृदय में परमात्मा आपको अपने आप को पहचान करा देगा। लेकिन पहला उसका अंग है सुनना। तो भगवान से की जानकारी के भगवान कितने सुंदर है, कितने मधुर है, कितना प्रेम करने वाले हैं, कितना करुणामय है, वो उसकी जानकारी हमको साधु और शास्त्र से मिलेगी। और शास्त्रों के शिक्षा के लिए और साधुओं के रहने के लिए ये मंदिर बने हैं, और इसलिए आपको यहाँ आज के दिन बिठा के ये भगवान के बारे में जानकारी दी जा रही। रुक्मणी ने कभी भगवान श्री कृष्ण को देखा नहीं था, कृष्ण के बारे में सुना था, जानकारी हो गई तो कृष्ण से प्रेम हो गया, फिर भी चिट्ठी लिखनी पड़ी ब्राह्मण के साथ, कृष्ण को मालूम था फिर भी चिट्ठी लिखनी पड़ी। ऐसे हमको पहले जानना पड़ेगा, फिर भगवान को चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। और ये रोज हरे कृष्ण जपते हैं, ये भगवान को चिट्ठी है कि हमको अपनी सेवा में लगाओ, हमें अपनी सेवा में लगाओ। तो ऐसे हमें फिर भी प्रार्थना हमको करनी पड़ेगी भगवान को, लेकिन जानकारी शास्त्र से, साधु से मिलेगी। आपने कुछ बोला, चार क्या बोला? चार योग, चार युग या योग? चार युग या चार योग? चार, या चार युग तो कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये और योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ये चार योग ऐसे हैं जैसे जैसे सीढ़ी है, एक सीढ़ी है जो ग्राउंड फ्लोर को चौथे फ्लोर से मिलाती है, तो सीढ़ी का नाम है योग। उसके अंदर जो कर्म योग का स्टूडेंट है वो पहले माड़े पे खड़ा है, ज्ञान योग का स्टूडेंट दूसरे माले पे खड़ा है, ध्यान योग का स्टूडेंट तीसरे माले पे खड़ा है, भक्ति योग का स्टूडेंट फोर्थ फ्लोर पे खड़ा है जहां उसको जाना है। एक ही सीढ़ी है, उसके ये अलग अलग स्तर है। कर्म योग का अर्थ है मैं काम कर रहा हूं किसके लिए? भगवान के लिए। तो भगवान के बारे में जानकारी होगी तब भगवान के लिए काम करेंगे ना, जानकारी होगी तब काम करेंगे ना। फिर दूसरा मन में क्या विचार आएगा, भाई किसके लिए काम कर?